हगाय अध्याय दो, हगाय अध्याय दो पद एक से लेकर तीन तक। फिर सातवें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हगाय भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुबाबेल और यहोसादक के पुत्र यहोशु महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या ये सच नहीं कि ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? सुलेमान का मंदिर सच में एक बहुत ही भव्य भवन था, जिसे नबुकदनेज़र की सेना ने तोड़ दिया था। एज़रा की पुस्तक में बताया गया है कि जब उन्होंने इस नए मंदिर की नींव डालना शुरू की, तो जवान लोग जो बाबुल की गुलामी में पैदा हुए थे, जिन्होंने गुलामी से पहले यरूशलेम की भव्यता को और उस मंदिर की भव्यता को जिसे सुलेमान ने बनवाया था नहीं देखा था, वे सब जवान बहुत आनंदित थे। वे नाच रहे थे, वे खुश थे, हम परमेश्वर के मंदिर की नींव रख रहे हैं। लेकिन वृद्ध लोग जिन्होंने सुलेमान के मंदिर की भव्यता को देखा था, उसे याद करके कि ये मंदिर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, वहां खड़े होकर रोए। इस अवसर पर ये वृद्ध लोग सुलेमान के भव्य मंदिर को याद करके रो रहे थे, तब परमेश्वर का वचन हगाय नबी के द्वारा आया और सब बचे हुए लोगों, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या ये पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? हगाय अध्याय दो पद चार। तो भी अब प्रभु की ये वाणी है, हे जरुबाबेल, हियाव बांध और हे यहोसादक के पुत्र यहोशु महायाजक, हियाव बांध और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अतः वे लोग जो ये देखकर निराशा से मुंह लटकाए हुए थे कि ये मंदिर पहले की अपेक्षा कुछ भी नहीं है, उन्हें परमेश्वर ढाढ़स देता है और कहता है, हियाव बांध कर काम करो। वह उनको फिर से अपनी वाचा की याद दिलाता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हगाय अध्याय दो पद पांच से लेकर सात तक। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये भविष्यवाणी उस महाक्लेश के समय की है, जब परमेश्वर पूरे संसार को कपकपाएगा। इब्रानियों की पुस्तक के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहोवा की ये वाणी है कि एक बार फिर मैं सारे संसार को ऐसा हिलाऊंगा जैसा पहले कभी न हिलाया गया, इसलिए जो हिलाया जाएगा वो नीचे गिर जाएगा, और केवल वो जो हिलाया नहीं जाएगा अटल बना रहेगा। एक बार फिर परमेश्वर कहता है, मैं संसार को तब तक हिलाता रहूंगा जब तक कि हिलाई जाने वाली वस्तु समाप्त न हो जाए। उस समय जब ऐसा होगा, साफ साफ कह दूं कि मैं तो इस शहर में नहीं रहना चाहूंगा। परमेश्वर ने तो स्पष्ट कह दिया है, मैं संसार को तब तक हिलाता रहूंगा जब तक कि हिलाई जाने वाले वस्तु समाप्त ना हो जाए। ये कैसी मूर्खता है कि हम अपनी सारी ताकत, सारा समय, सारा दिमाग और सारे उपाय दुनिया की चीजों के पीछे लगाते हैं। ये सब तो हिला दिया जाएगा और समाप्त हो जाएगा। अपना समय, ताकत, अपने सारे उपाय हमें आत्मिक बातों में लगाने की जरूरत है, क्योंकि वे बातें ना तो हिलेंगी और ना समाप्त होंगी। जब सब कुछ हिलकर समाप्त हो जाएगा तब भी ये बातें स्थिर रहेंगी। हमारे पास एक ही जीवन है जो शीघ्र समाप्त हो जाएगा। आप यीशु मसीह के लिए जो कुछ करेंगे वही सर्वदा के लिए रहेगा। आपने अपने लिए जो कुछ भी बनाया है, आपकी संपदा या जो भी हो, सब लकड़ी, भूसा और चारा है। सब कुछ जल जाएगा। केवल वही जो आपने आत्मिक भंडार में इकट्ठा किया हुआ है सदा के लिए स्थिर रहेगा। ये सुनकर क्या हमें प्रेरणा नहीं मिलती कि हम अपने जीवन पर नए सिरे से ध्यान दें? परमेश्वर कह रहा है, सुनो, सोचो, ध्यान दो, अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करो। आपके जीवन में प्रथम क्या है? आपके दिमाग और आपके जीवन में सबसे प्रमुख जगह किसकी है? इस संसार के हिलाए जाने के बाद, इस भौतिक नश्वर संसार के खत्म हो जाने के बाद, जातियों की मनोकामना पूरी होगी, अर्थात मसीह यीशु का महिमामय दूसरा आगमन, और तब परमेश्वर की महिमा से मंदिर फिर से भर जाएगा। ये वही मंदिर होगा जिसका वर्णन एहेस्केल की पुस्तक में किया गया है, हगाय अध्याय 2:8-9। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रभु के दोबारा आगमन और जातियों की मनोकामना पूरी होने तथा परमेश्वर की महिमा से मंदिर के भर जाने के बारे में हग्गाय की एक उत्तम भविष्यवाणी है। इसी स्थान में परमेश्वर शांति प्रदान करेगा, हग्गाय अध्याय 2:10-12। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को, अर्थात पहली भविष्यवाणी के 2 माह बाद, यहोवा का ये वचन हग्गाय भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाखमधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वो भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। परमेश्वर ने ले व्यवस्था की पुस्तक में पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के बारे में नियम दिए हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को अशुद्ध बना सकते हैं, और आप जो कुछ छुएंगे वो भी अशुद्ध हो जाएगा। यदि आप किसी मृत देह को छू लेते हैं तो आप अशुद्ध माने जाएंगे, और फिर आप किसी और वस्तु को छुएंगे तो वो भी अशुद्ध मानी जाएगी। इसलिए वो कह रहा है, याजक अपने वस्त्र में पवित्र वस्तु बांधकर कोई साधारण वस्तु को छुए, तो क्या वो वस्तु फिर भी पवित्र रहेगी? जवाब है, नहीं। ये बड़ी रोचक बात है कि कैसे यीशु के समय में याजक, शास्त्री और फरीसी सड़क पर चलते समय अपने कपड़ों को अपने चारों ओर कसकर लपेट लेते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका कपड़ा उड़कर अकस्मात किसी अपवित्र मनुष्य को छू जाए। पवित्रता के इसी दिखावे के विरुद्ध यीशु ने कहा कि वे पाखंडी हैं। उनकी मानसिकता थी, मैं अन्यों से अधिक पवित्र हूं, मुझे मत छूना क्योंकि मैं बहुत पवित्र हूं। फरीसी और याजकों ने यीशु में दोष ढूंढे क्योंकि वो आम मनुष्यों के साथ, पापी और चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता था। वो उनके साथ एक ही थाली में खाता था, इसी कारण वे यीशु को दोषी मानते थे। अब दूसरा सवाल, हग्गई अध्याय 2:13-14 तक। फिर हग्गई ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वो अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हां अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गई ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में ये प्रजा और ये जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे यहां चढ़ाते हैं वो भी अशुद्ध है। इस तरह हम पाते हैं कि अपवित्र वस्तु को छूने से अपवित्र होने का नियम आत्मिक बातों को सांसारिक बातों में मिलाना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, और जो कुछ वे यहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। हग्गई अध्याय 2:15-16। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाकरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। दूसरे शब्दों में, मंदिर का निर्माण शुरू करने से पहले उन दिनों में ही तुम्हारे पास कमी थी, तुम्हारे पास किसी भी बात में भरपूरी नहीं थी। अब बात पर ध्यान दो और सोचो। हग्गई अध्याय 2:17-19 तक। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी? इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं, प्रभु परमेश्वर, तुमको आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है, देखो तुम पिछले कुछ दिनों से आर्थिक परेशानी में हो, तुम्हारे पास इतनी भरपूरी नहीं कि सब काम कर सको, तुम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकताएं गलत हैं। तुम सब बातों में अपनी जरूरतों को और अपने आप को प्रथम स्थान देते हो, इसलिए ऐसा है। मुझे प्रथम स्थान दो, तब तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा, तुम्हारी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। अब जैसे ही उन्होंने मंदिर को बनाना शुरू किया और खुद मंदिर निर्माण कार्य में मेहनत करना शुरू किया, तब भविष्यद्वक्ता ने आकर कहा, अब देखो आज के इस दिन को लिख लो, अब से सब कुछ बदलना शुरू हो गया, अब यहां से आगे तुम्हारे पास बहुतायत होगी, अब तुमने अपनी प्राथमिकता को सीधा किया है, अब तुमने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है जहां उसे हमेशा होना चाहिए था। अब परमेश्वर भी तुम्हारी देखभाल करेगा और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। ये एक तथ्य है और एक स्थापित नियम है जो किसी भी युग या समय में नहीं बदलता है। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो और परमेश्वर आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जीवन की बातों को पहला स्थान दो और घटी का सामना करो। आपके पास कोई भी वस्तु पर्याप्त नहीं होगी। कई बार हम ये दलील देते हैं, जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा तब हम दसवां अंश देना शुरू करेंगे। ये तो वही बात हुई कि एक सज्जन कहते हैं, जैसे ही मेरे पास काफी पैसा होगा मैं विवाह कर लूंगा। वो बेचारा आज भी कुवारा है, उसके पास पर्याप्त पैसा कभी नहीं होगा। आपको विश्वास से कदम रखना ही होगा। एक बार फिर हग्गई के पास परमेश्वर का वचन आता है। ये पांचवी और अंतिम बार है। हग्गई अध्याय 2:20। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का वचन हग्गई के पास पहुंचा। इस प्रकार हग्गई की भविष्यवाणियों का समय 2 महीने था। ये भविष्यवाणियां मुझे बहुत ही आकर्षक लगती है। मैं इन पर वर्षों से मनन कर रहा हूं। हग्गई अध्याय 2:20-21। यहूदा के अधिपति जरुबाबेल से यू कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपवाऊंगा। यहां एक बार फिर उस महाक्लेश के दिन का जिक्र है। हग्गई अध्याय 2:22-23। और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को चढ़वायों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का ये वाणी है। उस दिन हे शलतियेल के पुत्र मेरे दास जरुबाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 11वें अध्याय में यूहन्ना 2 गवाहों के बारे में बताता है जिन्हें परमेश्वर भेजने वाला है। इन 2 गवाहों में से एक के बारे में तो हम जानते हैं कि वो एलिया है, क्योंकि पुराने नियम के अंतिम पुस्तक मलाकी के 4 अध्याय के 5वें और 6वें पद में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को नाश करूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 गवाहों में से एक एलिया प्रभु से पहले आएगा। अब दूसरा गवाह की पहचान के लिए तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो हानोक है, क्योंकि वो मरा नहीं था परंतु स्वर्ग में उठा लिया गया था। एलिया भी नहीं मरा था, इसलिए ये दोनों आएंगे, क्योंकि इन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। कुछ और लोगों का ख्याल है कि दूसरा गवाह मूसा होगा, क्योंकि वो व्यवस्था का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार से एलिया भविष्यत वक्ताओं का प्रतिनिधि है, यहूदियों एवं यहूदी राष्ट्र के लिए व्यवस्था और भविष्यत वक्ता हमेशा से परमेश्वर के प्रवक्ता रहे हैं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये 2 गवाह कौन हो सकते हैं। मैंने हमेशा दूसरे बाइबल शिक्षकों को इस पर बोलने दिया है, परंतु मेरा अपना विचार है कि जरुबाबेल दूसरा गवाह होगा, क्योंकि परमेश्वर यहां बताता है, जब मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा, उस दिन हे जरुबाबेल, मेरे दास, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। बिना किसी सबूत के आप मेरी इन बातों पर विश्वास मत कीजिए। जकरिया की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में से मैं एक संदर्भ देना चाहता हूं। जकरिया अध्याय 4 पद 1 से लेकर 7 तक। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके सात दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए सात सात नालियां हैं, और दीवट के पास जलपाई के दो वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाई ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुबाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कि जलपाई के दो पेड़ जो नालियों के साथ है और वे नालियां दीपक तक जा रही है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जरुबाबेल दूसरा गवाह होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 11वें अध्याय पद 3 और 4 में इन दो गवाहों का जिक्र है। मैं अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दीवट असल में जरुबाबेल के प्रति परमेश्वर का वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से। और यहां इस भविष्यवाणी के अनुसार प्रकाशित वाक्य के उस हिस्से में दो गवाहों के रूप में जरुबाबेल का जिक्र है। यहां पर सोचने वाली बात है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचने में ये बात रोचक है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह की वापसी के लिए हमारे दिल कैसे ललकते हैं। संसार उसके प्रेम के स्पर्श की, अनुग्रह के अभाव की तथा उद्धार करने की सामर्थ की कैसी गहरी आवश्यकता में है। हे प्रभु, हम इस पृथ्वी को हिलते हुए देख रहे हैं, हम राज्य राज्य को हिलते हुए देख रहे हैं, हम पृथ्वी पर उथल पुथल निराशा और परेशानियों को भी देखते हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपका राज्य आए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हे प्रभु, मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा हुआ है, वो अपनी भावनाओं और लालसाओं के द्वारा इस सुंदर पृथ्वी को जिसे आपने रचा है नाश कर चुका है। हमने संसाधनों का दुरुपयोग किया है, हमने वातावरण और जल को दूषित कर दिया है। हे परमेश्वर, हमने तेरी सुंदर सृष्टि को कैसे लूटा है और विनाश किया है। हे परमेश्वर, हमें तेरी सहायता की कितनी आवश्यकता है। आज इस संसार को तेरी सहायता की अतः आवश्यकता है। हे प्रभु यीशु, जल्दी आ, अपने राज्य की स्थापना कर, शांति और धार्मिकता ला, नहीं तो मनुष्य अपना नाश कर लेगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर के प्यार और उद्देश्य को समझने की सामर्थ्य दे। आपकी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में परमेश्वर आपकी मदद करे। वे एक बड़े आधार के त्रिकोण के बारे में चर्चा करते हैं कि जब आप उसे नीचे से काटते हैं तो आप उस त्रिकोण को छोटा बना देते हैं। यदि आप उसे काटते जाएंगे तो अंत में आपके पास केवल ऊपरी भाग बचेगा। आपके जीवन की ऊपरी भाग क्या है? आपकी वो सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? आप अपने जीवन में सबसे अधिक लगाव किससे रखते हैं? यदि वो मसीह यीशु से हटकर कुछ और है तो आप मसीह विश्वासी नहीं हैं। उसे ही अपने जीवन में सबसे ऊपर स्थान दो। वही आपके अस्तित्व और जीवन का प्रभु होना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रभु कहता है, ध्यान दो, विचार करो, अब से आगे अपने जीवन में इस बात पर विचार करें। आप अपने जीवन में टीवी को कितना समय दे रहे हैं और प्रभु के साथ सहभागिता को कितना समय? आप अपनी रुचि को पूरा करने में कितना समय लगाते हैं और प्रभु के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं? अपने आप को देखें और अपने जीवन पर ध्यान दें। हो सकता है कि आपकी कुछ परेशानियों के पीछे यही कारण है, अर्थात आपकी प्राथमिकता यथोचित नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं को उचित स्थान में रखें और मैं आपको गारंटी देता हूं कि परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। आज की तारीख लिख लीजिए। आप अपने मन और अपने जीवन को जांचते हैं, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं और परमेश्वर के साथ मिलकर सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा।